So we continue.
हम लोग आगे बढ़ेंगे.
He tells us that Levi was less than Melchizedek.
वो कह रहे हैं कि लेवी गोत्र से जो याजक पद आता है वो मलकीसदक से कम है.
It's because Abraham paid tithes to Melchizedek.
इसका कारण क्या है? इब्राहिम मलकीसदक को दशमांश दिया.
Showing that he himself thought Melchizedek greater than he.
और वो खुद सोचे कि मलकीसदक उससे महान है.
And at the same time, Melchizedek blesses Abraham.
और उसी समय में मलकीसदक इब्राहिम को आशीष दे रहे हैं.
Showing that he was greater than Abraham.
और दिखा रहे हैं कि वो इब्राहिम से बड़े हैं.
And because Levi is the descendant of Abraham,
और जो लेवी जो अब्राहम के वंशज थे,
the logic dictates that Melchizedek was greater than Levi.
और ये यहाँ दर्शाता है कि मलकीसदक जो हैं, वो लेवी से भी बढ़कर हैं.
If therefore Levi is insufficient to the task.
और जो लेवी जो जिस जो दिया गया था उसे वो करने के लिए विफल जो हुए
हैं,
इसीलिए एक अलग याजक का जरूरी था.
Because if perfection came from the law,
अगर व्यवस्था से अगर सिद्धता आता,
then we needed no one else.
So हमको और किसी का जरूरत नहीं होता.
If the law was to save you, then we didn't need Christ.
अगर व्यवस्था आपको उद्धार दे देता तो यीशु मसीह का जरूरत ही नहीं पड़ता.
There's no need for Isaiah 53.
और Isaiah 53 जो लिखा गया उसी का जरूरत नहीं आता.
There's no need for Psalm 22.
और भजन संहिता 22 जो लिखा गया उसका भी जरूरी नहीं आता.
But we're told there is a need because the law was insufficient.
लेकिन हमें कहा गया है कि हमें जरूरी था क्योंकि व्यवस्था काफी नहीं था.
Because it was never designed to save you.
और क्योंकि उसे ऐसे संरचना नहीं किया गया था कि वो आपको उद्धार दे.
And so God says in Psalm 110, He's making the Messiah a priest after the order of Melchizedek.
इसलिए परमेश्वर भजन संहिता 110 में कहा और यीशु मसीह को या मसीहा को मलकीसदक की रीति पर अनंतकालीन याजक ठहरा है.
And because he's made him a priest after the order of Melchizedek.
और वो किसी कारण वो मसीह को मलकीसदक की रीति पर अनंतकालीन याजक ठहरा है.
Look at verse 18.
और 18 आयत को हम देखेंगे.
For there is verily a disannulling of the commandment.
और it is as
verse 18 of
7. लिखा जाता है पढ़िए कोई इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल
गोइंग बिफोर फॉर द वीकनेस एंड अनप्रॉफिटेबलनेस थेरऑफ
और निष्फल होने के कारण लोग हो गई.
The law could never make someone perfect.
और व्यवस्था किसी को सिद्ध नहीं बनाएगा, बना नहीं पाता.
Remember, Jesus Christ fulfilled the law.
याद रखिए कि यीशु मसीह व्यवस्था को सफल किए.
The law did not make him perfect.
और व्यवस्था उनको सफल नहीं किया.
He was perfect regardless of the law.
वो खुद ही सफल, खुद ही सिद्ध थे.
The law points out our imperfections.
और व्यवस्था जो है हमारे दोष को दिखाता है.
It points out our failings.
और हम जहाँ पे निर्बल हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, वही चीज को दिखाता है.
That's what Paul says in Romans 3:23.
और इसीलिए रोमी 3:23 में पौलुस ये कहता है.
For all have sinned and come short of the glory of God.
और सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से वो नीचे चले गए.
It's the same thing that Paul says in Romans chapter 8 verses 3 and 4.
और रोमी 8 उसका 3-4 में ऐसे पौलुस कहता है.
For what the law could not do,
और जो व्यवस्था कर नहीं सका,
in that it was weak through the flesh,
और जो शरीर के कारण दुर्बल होने पर,
God sending His own Son in the likeness of sinful flesh,
परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपने स्वरूप जो पाप में शरीर में भेजा,
and for sin condemned sin in the flesh,
और पाप के द्वारा पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर ने पाप पर दंड की आज्ञा दी,
that the righteousness of the law might be fulfilled in us.
जैसे पर वो व्यवस्था की धार्मिकता हमारे जीवन के द्वारा पूरा हो.
Who walk not after the flesh but after the spirit.
जो आत्मा के अनुसार चलते हैं परंतु शरीर के अनुसार नहीं उनके लिए.
What Paul is saying there is that Jesus fulfilled the law.
यहाँ पे पौलुस कहता है कि यीशु मसीह व्यवस्था को सफल किया.
He had his own righteousness before he fulfilled the law.
उसका खुद ही वो अपने भी वो धार्मिक था जो व्यवस्था को पूरा करने से पहले.
And the law said yes he is righteous.
और व्यवस्था का हाँ ये सही है ये धर्मी है.
And then he gives us that same righteousness.
और वो वही धार्मिकता हमें भी दिए.
So that as we live live,
और जिस प्रकार हम यहाँ पे वास करते हैं,
when we live in Christ,
और जब यीशु में हम जी रहे हैं,
we are fulfilling the law,
हम व्यवस्था को सफल कर रहे हैं,
because our Savior fulfilled the law,
क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता ने सफल किए,
the law was never meant to make you perfect, it can't do it,
और व्यवस्था आपको कभी सिद्ध होने नहीं देगा और कभी नहीं कर सकता,
it was weak and unprofitable in that way,
ये दुर्बल था इसलिए वो काफी नहीं था.
Someone read Jeremiah chapter 31.
और यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय को कोई निकाले.
Verse 31 to 34.
और 31 से 34.
Jeremiah 31, 31 to 34.
यिर्मयाह 31, 31 से 34.
यहोवा की वाणी यहाँ भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तभी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे. यहोवा की वाणी है.
Jeremiah is telling us what God is going to do.
यहाँ पे परमेश्वर जो करने वाले हैं उसको यिर्मयाह यहाँ पे कह रहे हैं.
I made a covenant with Moses and with Israel.
वो कह नहीं रहे कि यहाँ पे मैं मूसा के साथ एक नियम बनाऊंगा इज़राइल में.
But I'm going to make a new covenant because they broke the old one.
परंतु वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो लोग उसे तोड़ दिए इसलिए एक नया नियम मैं इनके साथ वाचा बांधूंगा.
But this new one is going to be different than the old one.
लेकिन ये वाचा जो नया वाचा ये पुरानी वाचा से अलग होगा.
Remember, a covenant is a contract.
और आप याद कीजिए ये जो बातचीत है ये कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में.
Your boss says you're going to do this job.
आपके जो बॉस हैं आपको कह रहे हैं कि आपको ये करना होगा.
And I'll give you this money.
और करने के बाद मैं आपको ये पैसा दूंगा.
That's a contract. That's a covenant.
ये एक कोवेनेंट ये एक बातचीत है ये कॉन्ट्रैक्ट है.
Israel broke the covenant.
और इजरायली जो है ये बातचीत को तोड़ दिए.
Why?
क्यों?
Because we're all sinners.
क्योंकि हम सब पापी हैं.
If we had been in Israel, we would have broken the
covenant. अगर हम भी इजरायली होते हम भी वो वाचा को तोड़ते.
It was impossible to keep.
और ये असंभव है उसको पकड़े रहना.
And those who lived in faith in Israel understood that.
और जो विश्वास में वो है थे वो जो इजरायली थे लेकिन वो समझ गए इसे.
They believed God and they looked forward to the Messiah.
और वो परमेश्वर पर विश्वास रखे और मसीह पर ध्यान दिए.
When we get to Hebrews 11, and we'll read of many of them.
हम जब इब्रानी 11 को जाएंगे बहुत लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे.
But for our purposes now, understand that the new covenant is completely different than the old.
लेकिन हमारा उद्देश्य यह है जो नई वाचा है पुरानी वाचा से पूरी तरह अलग है.
When we get into chapter 8 tomorrow,
जब कल हम अध्याय 8 में जाएंगे,
we'll look closer at it.
हम थोड़ा ज्यादा निकट से देखेंगे.
But what do the commandments say?
और वो वाचा क्या कहता है?
You shall not.
तुम नहीं करोगे.
You shall not.
तुम नहीं करोगे.
You shall.
तुम करोगे.
Who's responsible to keep the covenant?
ये किसका दायित्व है जिम्मेदारी है कि एक वाचा को पकड़े रहना.
You are.
आप.
That's the old covenant.
ये पुराना नियम.
What does Jeremiah say about the new covenant?
लेकिन यदि मैं यहाँ पे नए वाचा के बारे में क्या बोल रहे हैं?
We just read it.
हम लोग अभी पढ़े.
Look what God says.
यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहे हैं देखिए.
After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts.
लिखा जाता है फिर यहोवा की ये वाणी है सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के बीच में नई वाचा बांधूंगा.
And write it in their hearts.
और उनके हृदय में बांधूंगा.
And will be their God, and they shall be my people.
और मैं उनके परमेश्वर हूँगा वो मेरे बेटे बेटी होंगे.
Look at the end of verse 34.
और 34 के शेषांश को जब हम देखते हैं.
For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more.
क्योंकि मैं उनका अधर्म को क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा.
The new covenant is different than the old.
और ये जो नई वाचा है पुरानी वाचा से अलग.
It's no longer you.
ये अभी नहीं कह रहा है कि आप.
It's God who is doing.
ये परमेश्वर जो करने वाला है करता
है. He is forgiving.
और वो क्षमा देता है.
He is looking through Christ to you and seeing no sin.
यीशु मसीह के जरिए आपको देखता है और धर्मी ठहराता है, पाप को नहीं देखता है.
Only righteousness.
और धार्मिकता.
That's why in verse 19 of Hebrews 7 he says we have a better hope.
और इसीलिए इब्रानी 7 उसका 19 में लिखा जाता है हमारे पास एक अच्छा विश्वास है.
The law never perfected Christ.
और व्यवस्था कभी यीशु मसीह को सफल नहीं किया, सिद्ध नहीं ठहराया.
He was already perfect.
लेकिन यीशु मसीह खुद अपने ही सिद्ध थे.
That's why he is a better hope.
इसीलिए वो अच्छा विश्वास है.
Because he shares that hope with us.
क्योंकि वो विश्वास को हमारे साथ वो शेयर किए हैं.
So that we can draw nigh unto God.
ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंच सके.
You remember what the Israelites did at the bottom of the mountain?
और इसे पहाड़ के नीचे वो लोग क्या किए थे आपको पता है इजरायली लोग?
They traveled out of Egypt and they finally arrived at Mount Sinai.
और वो मिस्र छोड़कर इधर गए और शेष में वो सीनै पहाड़ के पास आए.
God says, gather the people together and make sure they don't touch the mountain.
और परमेश्वर ने क्या कहा कि लोगों को इकट्ठा करो लेकिन जान लो कि पहाड़ को मत छुए ये.
And God speaks.
और परमेश्वर ने कहा.
Gives them the Ten Commandments.
और परमेश्वर ने वहाँ उन्हें 10 आज्ञाएं दी.
And they are afraid.
और वे डरने लगे.
They don't want to go near to God.
वो परमेश्वर के पास जाने के लिए नहीं चाहे.
But God says that they've said right, Moses.
और लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मूसा ये लोग सही कह रहे हैं.
Because if they come near to me, they will surely die.
अगर वे लोग मेरे पास आते हैं तो जरूर मरेंगे.
Because their sin was still upon them.
क्योंकि उनका पाप उनके ऊपर है.
But the writer of Hebrews says it different.
लेकिन इब्रानी के लेखक कुछ दूसरे भाषा में कहते हैं.
We have a better hope.
हमारे पास एक अच्छा भरोसा है.
We can draw nigh unto God.
हम परमेश्वर निकट जा सकते हैं.
And not just close, but we can go into His presence.
हम केवल उसके पास नहीं जा सकते हैं, उसके अंदर हम जा सकते हैं.
Paul is saying the same thing in Galatians chapter 3.
गलतियों के पत्र 3 अध्याय में पौलुस यही चीज को कहता है.
He says in verse 11.
11 आयत को जब देखेंगे.
But that no man is justified by the law in the sight of God.
और लिखा जाता है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई मनुष्य धर्मी नहीं ठहरता.
It is evident. It's clear.
और ये clear है कोई नहीं धर्मी ठहरता.
For the just shall live by faith.
क्योंकि धर्मी विश्वास से जीता है.
You know that's a quote from the Old Testament.
और ये पुराने नियम से लिया गया उक्ति है.
The same God in the Old Testament and the New Testament.
और ये एक परमेश्वर जो पुराना नियम का और नया
He is the same yesterday, today, and forever.
वो कल, आज और इगाने युग से वो एक ही परमेश्वर है.
Remember, we talked about Abraham and the promise made to him.
और याद कीजिए हम इब्राहिम के बारे में बात किया और जो प्रतिज्ञा उसे दी उसके बारे में भी.
What was the promise?
तो प्रतिज्ञा क्या था?
That his seed would inherit the promise.
और प्रतिज्ञा था उसके वंश वो प्रतिज्ञा देश को अधिकार करेंगे.
And we saw in Galatians 3 that Jesus Christ is his seed.
और हम गलतियों के पत्र 3 में हम देखे कि यीशु मसीह उसके वंश थे.
But that through faith we become co-heirs with Christ.
और विश्वास के जरिए हम भी उसके अधिकारी हुए.
That we are the inheritance of the promise.
और प्रतिज्ञा को हम भी विश्वास के जरिए अधिकारी बन गए.
So then how do we draw near to God?
और इसलिए हम परमेश्वर के पास आ पाते हैं.
Well, we've talked about it in chapter 4.
और कैसे आएंगे हम चौथे अध्याय में हम बात किए.
What do we say in verses 15 and 16?
और चौथे अध्याय उसका 14 और 15 आयत में क्या लिखा जाता है?
Someone read.
कोई पढ़ सकते हैं? इब्रानी 4 14 15.
इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अहंकार को दृढ़ता से थामे रहे क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं से हमारे साथ दुखी ना हो सके वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला.
You see, we can draw nigh unto God because we have a great high priest who is touched with the feeling of our infirmities.
और वो देखिए हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ऐसे महायाजक हैं जो हमारे निर्बलताओं को जानते हैं.
He had to be God and he had to be man.
उनको मनुष्य भी होना था और ईश्वर भी होना था.
If he was only man, he couldn't approach God.
अगर वो खाली इंसान होते तो परमेश्वर के सामने विनती नहीं कर पाते.
If he was only man, he couldn't die for us.
और अगर वो खाली इंसान होते तो हमारे लिए मर नहीं पाते.
No matter how much he fulfilled the law.
हो सकता है वो कितना व्यवस्था को सफल किए हो.
But because he's God, he could die for us.
क्योंकि वो परमेश्वर थे इसीलिए हमारे लिए मर सके वो.
His death has eternal value.
और हमारे लिए उनका जो मौत हमारे लिए अनंत काल के मूल्य को लाया.
But because he was a man, he knows how we feel.
और क्योंकि वो इंसान थे इसीलिए वो हमारे दुर्बलताओं को भी जानते हैं.
And he invites us to draw near.
और इसीलिए वो हमें स्वागत करते हैं उसके पास आने के लिए.
Now, when we think about these things,
और जब हम ये सारी चीजों को सोचते हैं,
we can start to look down on the Israelites a little bit.
और इजराइली लोगों के जो उनके विषय में थोड़ा हमें जानने के लिए उत्सुकता होता है.
We can say, why didn't they get it?
हमें ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि वे लोग क्यों नहीं पाए, उनको क्यों नहीं मिला?
Why didn't they understand?
और ये बातों को ये लोग क्यों नहीं समझे?
Why couldn't they see that God was bringing forward the Messiah?
और ये लोग क्यों नहीं समझे, क्यों नहीं देखे कि परमेश्वर उनके सामने मसीहा को ला रहा है?
And the Messiah was going to be prophet, priest, and king, three offices in one person.
और मसीहा जो होगा वो नबी होगा, वो राजा होगा और याजक होगा.
But be careful.
लेकिन हमें ध्यान देना जरूरी है.
Because we will change.
और हम बदल जाते हैं कई बार.
What we understand will change.
और हम जो समझते हैं वो भी कभी कभी बदल जाता है.
You know, when we see him face to face,
जब आप जानते हैं हम जब उसको आमने सामने देखेंगे,
there are many things about our faith now that will disappear.
जब हम ये अभी विश्वास कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे उसको वो कुछ नहीं होगा.
There will be no more following Christ in baptism.
और बपतिस्मा के द्वारा यीशु को पीछे चलना ये शायद नहीं होगा.
There will be no more remembering him at the Lord's Supper.
और वहाँ पे जो हम मेज में जो रोटी और दाख रस लेते हैं उसका वो याद करना शायद वहाँ पे नहीं होगा.
We won't need those reminders because we'll see him face to face.
हम आमने सामने देखेंगे इसलिए वो याद करने का और जरूरी नहीं है.
But that's not all.
लेकिन वो सब कुछ नहीं.
Your faith will disappear.
आपका जो विश्वास है, अभी जो विश्वास है, हो सकता है उस दिन और नहीं रहेगा, चला जाएगा.
It will no longer exist.
और वो नहीं ही रहेगा वो.
Because faith that is realized is no longer faith.
और जब हम जानते हैं कि हम जान गए कि ये हमारी चीज है, तो और विश्वास नहीं करना है वहाँ पे.
It's sight.
और हम उसे देख लिए.
Your hope.
आपका भरोसा मिल गया.
Your hope in Christ.
आपका भरोसा यीशु में.
Will disappear.
और हो सकता है वो चला जाएगा.
Because hope that is realized is no longer hope.
जब आप ये भरोसा मिल गया कि हो गया है, इसलिए भरोसा नहीं रहेगा, चला जाएगा.
You may be hoping to buy something. You may be hoping to do something.
आप हो सकता है भरोसा करें कुछ लेने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, कुछ करने के लिए.
I'm hoping to finish the book of Hebrews.
मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी इब्रानी का किताब खत्म करूँ.
Once the hope is realized,
जब ये जो भरोसा वो यानी आ जाएगा सब चीजों में,
the hope is done.
और ये खत्म हो जाएगा, भरोसा खत्म हो जाएगा.
Because we have the reality.
क्योंकि हम देख लेंगे मसीह को.
And the reality is so much better than the hope.
और ये सच्चाई जो है भरोसा से कहीं बढ़कर है.
The reality is so much better than the faith.
और ये जो सच्चाई है ये वास्तविकता ये विश्वास से कहीं बढ़कर है.
I desire to be next to my Lord instead of remembering.
मैं चाहूंगा कि मैं मेरे प्रभु के इधर साइड में बैठूं, ताकि उससे कि बेहतर मैं ऐसे साइड में उसको याद करूं, उससे बेहतर कि मैं मेरे प्रभु के साइड में बैठूं.
And no matter how much joy there is in baptizing a new convert,
एक नई आत्मा को प्रभु के पास लाने में और बपतिस्मा देने में जितना आनंदित मुझे लगता है,
that does not compare to the joy of seeing my Savior face to face.
और उसको मैं तुलना नहीं कर सकता मैं मसीह के साथ बैठा हुआ जो आनंद मना रहा हूं उसी के साथ.
So the writer of Hebrews reminds us.
और इसलिए इब्रानी का लेखक हमें याद दिलाते हैं.
He's saying his priesthood is a greater priesthood.
वो कहते हैं उसकी याजक पद जो अनंतकालीन है.
So what he says in verse 20 and 21.
और वो 20 और 21 में वो कहते हैं.
Someone read that.
कोई पढ़े. 7, 20 और 21. 7.
Yes.
7, 20, 21. इब्रानी 7, 20, 21.
जितना नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ उसके साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है.
Remember who has made him priest.
और याद कीजिए यीशु को कौन याजक बनाया.
It's the Lord.
ये परमेश्वर खुद.
It's not man.
ये कोई इंसान नहीं.
He even tells us as we go through every priest that's ordained.
और हम जब आगे जाएंगे देखेंगे जितने भी याजक जिनको नियुक्त किया जाता था.
They're not ordained with an oath.
और
They're not ordained with an oath.
और उनको शपथ के द्वारा नियुक्त नियुक्त नहीं किया गया.
But this one was with an oath by God.
लेकिन ये जो इनको जो नियुक्त किया गया एक शपथ के द्वारा नियुक्त किया गया.
We talked about God promising, didn't we?
और हम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के बारे में बात किए थे.
My promise is worth nothing.
और मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ उसका कोई मूल्य नहीं है.
Because I don't have a guarantee to make sure I fulfill it.
क्योंकि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि मैं जो प्रतिज्ञा किया हूँ उसे पूरा करूँ.
I could promise to finish the book of Hebrews.
मैं आपको प्रतिज्ञा कर सकता हूँ कि ये इब्रानी किताब मैं खत्म कर दूँ.
But I could lose my voice.
हो सकता है मेरा आवाज चला जाए.
I could be in an accident.
हो सकता है मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकता है.
I could be completely worn out.
हो सकता है मैं पूरा पूरी टूट जाऊँ.
I can't make the promise.
मैं प्रतिज्ञा नहीं कर सकता.
Because I can't fulfill the promise.
क्योंकि मैं पूरा भी नहीं कर सकता प्रतिज्ञा.
But when God speaks,
परंतु परमेश्वर जब कहता है,
everything He says is a promise.
और जो वो कहता है कि प्रतिज्ञा है हमारे लिए.
Because everything he says is firm and sure.
क्योंकि जो प्रतिज्ञा का वो कहता है वो सारा अटल है.
But to give us more comfort,
क्योंकि और जो हमें अधिक सांत्वना देने के लिए,
he says I've given it with an oath.
इसीलिए वो कहता कि मैं शपथ करके कह रहा हूँ.
I'm backing my promise with who I am.
और वो कह रहा है कि मैं प्रतिज्ञा को दे रहा हूँ क्योंकि मैं कौन हूँ.
So that if he doesn't do it, he ceases to be God.
और वो अगर वो कर नहीं रहा है तो कहेगा कि सही मैं परमेश्वर नहीं हूं.
By that,
इसीलिए
Jesus was made surety of a better testament.
इसीलिए परमेश्वर Jesus makes
was made surety of a better testament.
और एक अच्छा नया नियम के लिए यीशु मसीह भरोसा देते हैं.
It's important to get our minds around two words there.
और इसीलिए एक दो शब्द जो लिखा गया उसको ध्यान में रखना जरूरी है.
Surety.
और जो लिखा जाता है कि सही में जो भरोसा
and testament
और नियम वाचा.
We'll deal with testament first.
और पहले हम वाचा के साथ हम देखेंगे.
Because we've talked about it a little bit already.
क्योंकि हम इसके बारे में पहले से थोड़ा बातचीत किए हुए हैं.
A covenant is a contract between two people.
और वाचा जो है दो व्यक्ति के अंदर होता है.
A testament is not.
लेकिन नियम नहीं.
A testament is a will.
और ये नियम जो है वो इच्छा है.
So I have my wife and I, we have a will.
और मैं और मेरा पत्नी उसके पास हमारे बीच में एक इच्छा है.
If we were to die, all of our possessions are going to be distributed to our children according to our will.
और हमारी इच्छा के अनुसार अगर हम मर जाते हैं तो हमारे बच्चों में सही रीति से सब संपत्ति को बांट दिया जाए.
If we were entering into a covenant,
लेकिन अगर हम कोई वाचा के अंदर जाते हैं,
then my children would have to do something to get the things that I own.
तभी मेरे बच्चों को कुछ करना होगा वो चीज को पाने के लिए.
But because it's a will or a testament,
परंतु ये इच्छा और नियम होने के नाते,
when I die, they get it all.
जब मैं मरूंगा उनके पास सारा संपत्ति चला जाएगा.
It's an automatic thing in the law.
और ये एक स्वतः रूप से जाने वाला चीज है.
Jesus is the mediator of the New Testament.
यीशु मसीह नई वाचक में के लिए एक मध्यस्थी हैं.
There's a wonderful thing, and we're going to cover this more when we get into chapter 9 and chapter 10.
जब हम 9 और 10 अध्याय में आएंगे, इसके बारे में और भी कुछ हम जानेंगे.
But like the writer of Hebrews, we'll get a little taste now.
और इसीलिए लेकिन इब्रानी को लेकर हम थोड़ा स्वाद चखाना चाहते हैं.
In Hebrew, there is a word for covenant.
और इब्रानियों में एक शब्द है जो नियम के लिए.
But there is no word for will or testament.
परंतु ये इच्छा और टेस्टामेंट के लिए नियम के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं.
Because the law stated it the same for everybody.
क्योंकि व्यवस्था कहता है ये सारा चीज सब के लिए सही समान है.
There would have been no reason for me then to write something down.
और ऐसा कुछ मेरे लिए कारण नहीं कि मैं कुछ ऐसे लिख सकूं.
Unless I gave something to my other two sons before I died.
अगर मेरे मौत से पहले मेरे बच्चों को मैं कुछ देना चाहूंगा.
Firstborn gets it all.
और firstborn?
Firstborn gets it all.
और पहला जो मैं वो बिंदु है वो बिंदु चला जाएगा पहले.
So if I wanted Elijah and Isaiah to get something,
अगर मैं मेरे बच्चों को कुछ ऐसे देना चाहूंगा,
I need to make sure I give it to them before I go.
और इसीलिए मैं जाने से पहले उसको दे दूं उनको.
That's what the prodigal son's all about.
और इसीलिए वो जो हम लोग prodigal son के बारे में जानते हैं.
Give it to me now, Dad, before you die.
वो क्या कहे कि मुझे अभी दे दो पिताजी, मुझे अभी दे दो.
In Greek,
और ग्रीक भाषा में
the language of the New Testament,
और जो नया नियम के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया
there is a word that is specific for covenant, just like in Hebrew.
और एक शब्द इस्तेमाल किया गया जिसको हम वाचा बोल सकते हैं जैसे कि पुराने नियम में
but there's also a word that is specific for a will or a testament.
और लेकिन और एक शब्द है जो नियम के लिए और विल के लिए
so that you don't confuse the two.
इसीलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए
but see there's another word.
और एक दूसरा शब्द है
and this word can be either covenant or will.
और ये जो शब्द है ये हो सकता है वाचा हो सकता है नहीं तो नियम विल हो सकता है
covenant or testament.
और वाचा और नियम
That's the word that's used throughout the New Testament.
और ये सारे नए नियम में यही शब्द इस्तेमाल हुआ है.
So that when someone is reading in Jeremiah like we did.
और जैसे कि कोई यिर्मयाह पढ़ रहा है जैसे हम पढ़ रहे हैं.
And he says, I will make a new covenant with you.
और जैसे यहाँ पे लिखा जाता है कि मैं तुम्हारे साथ एक नया नियम नया वाचा बांधूंगा.
And you turn over to the New Testament.
और आप नए नियम को जब आते हैं.
And you read in Hebrews 7:22.
और जब आप इब्रानी 7:22 को पढ़ते हैं.
Where Jesus has made surety of a better testament.
और यहाँ पे लिखा जाता है यीशु ही उत्तम वाचा का जामिन ठहरा.
You understand that he's talking about the same thing.
और आप समझ जाएंगे कि वो एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं.
But there's a difference between a testament and a covenant, isn't there?
लेकिन वाचा और नियम के बीच में थोड़ा अंतर है.
And there's a testament. There's a difference between how the covenant was and how the testament is.
और वाचा कैसा होता है और नियम कैसे होता है उसमें थोड़ा अंतर है.
The covenant said if you do all of these things.
और वाचा को क्या कहता है कि ये सारे काम अगर तुम करोगे.
I will bless you.
मैं तुमको आशीष दूंगा.
The testament says I will give you all of these things because of my son.
लेकिन नियम और विल जो होता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा.
They are yours by faith.
ये विश्वास के द्वारा आप ही का है.
Because you are a son of God.
क्योंकि आप परमेश्वर का संतान हैं.
And remember that is not about gender, that is about inheritance.
और ये ऐसे पुरुष और स्त्री ऐसा नहीं लेकिन वंश के बारे में बोल रहे हैं.
When you study Romans 8 and Galatians chapter 4.
और जब आप रोमी 8 और गलतियों के पत्री 4 को पढ़ेंगे.
You find that each one of us is adopted as a son of God.
हम सभी जो परमेश्वर जानते हैं हमको पुत्रत्व का अधिकार मिला है.
So that we are all co-heirs with Christ.
इसीलिए हम उस यीशु के साथ सह अधिकारी हैं.
There is no difference between us whether we're Indian or in English.
ऐसा कोई जमीन ऐसा कोई फर्क नहीं कि हम इंडियन हैं और अमेरिकन हैं इंग्लैंड वाले हैं
or whether you're male or female.
आप पुरुष हैं और स्त्री हैं.
You have the same standing in Christ.
लेकिन आप यीशु के सामने यानी एक समान हैं.
That's because Jesus was surety of a better testament.
इसीलिए क्योंकि यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा है.
So let's think about that word surety.
इसीलिए वो जामिन को हम थोड़ा देखें.
We have a wonderful picture of it in Genesis.
और एक अच्छा छवि को हमको मिलेगा उत्पत्ति किताब में.
Turn to Genesis 43.
और उत्पत्ति उसका 43 को निकालेंगे.
In Genesis 43, there is a horrible famine in the land.
और उत्पत्ति 43 में एक मारी एक फेमाइन मरी ना या महामारी आया था.
It's a situation.
अकाल.
We understand Joseph has been in Egypt.
हम जानते हैं यूसुफ जो है वो मिस्र में है.
And he was there because his brothers sold him into slavery.
और ये इसीलिए हुआ क्योंकि उसके भाई लोग उसे बेच दिए.
And the Lord raised him up to be in a position to secure the safety of Israel.
और परमेश्वर ने उसे वहाँ पे उठाया ताकि इस्राएली लोगों को बचा सके.
By doing that, he secures the safety of many nations.
और ऐसे करने पर बहुत देश को फिर भी बचा सके.
But the famine is in the land and they say we got to go to Egypt and get food.
और तब वे लोग कहने लगे कि देश में भुखमरी है इसलिए हमें मिस्र को जाना है.
And so Jacob sends his sons.
और इसलिए याकूब ने अपने बेटों को भेजा.
But he only sends 10.
परंतु वो 10 को भेजा.
The reason he only sends 10.
क्योंकि वो 10 भेजा.
Is because he thinks one's dead.
वो सोच रहे थे एक मर गया है.
His favorite, Joseph.
और उसका जो अति प्रिय यीशु.
He doesn't know he's alive in Egypt.
और उसको पता नहीं कि मिस्र में वो जिंदा है बोल के.
And his second favorite, Benjamin.
और जो उसका दूसरा प्रिय बेटा बेंजामिन.
He doesn't want to lose him.
और उसको वो खोना नहीं चाहता था.
So he only sends the 10.
इसलिए वो 10 को भेजा.
And they come before Joseph.
और वो यीशु के सामने ये लोग आए.
And they don't recognize Joseph.
और वो
They don't recognize him.
और यीशु को नहीं पहचाने.
He's wearing Egyptian clothes.
क्योंकि यीशु जो मिस्र का वो पहनावा पहना था.
He's probably shaved his beard and his head.
हो सकता है वो अपना ये जो बेड वो शेव किया था.
Who would have thought that someone would have who was sold into slavery would now be in charge of the country?
कौन सोचेगा कि जिसको कोई बेच दिया है वो आज मिस्र का कोई मालिक ठहरा है.
And Joseph starts to ask them a bunch of questions.
और इसीलिए यीशु उनको कुछ सवाल पूछने लगा.
And he accuses them of being spies.
और उनको दोष लगाने लगा कि ये लोग भेद जानने आए हैं.
You're trying to figure out our secrets so you'll come and steal our food.
आप लोग भेद जानने आए हो इसलिए खाना लेने के बहाने आप लोग इधर आए हो.
He's trying to figure out whether his brothers have changed or not.
और उनको ये यीशु को पता लगाना था कि ताकि उनके भाई बदले और नहीं बदले ये पता लगाना था.
And how his closest brother Benjamin is doing.
और उसका जो अति प्रिय भाई बेंजामिन क्या कर रहा है उसके विषय में जानने के लिए.
Because he sees he's not with him.
क्योंकि वो देख लिया कि बेंजामिन उनके साथ नहीं था.
He doesn't know Joseph of Jacob kept them at home.
और उनको पता नहीं था कि वो याकूब उसे घर में रखा है.
And he's thinking, did they do to him what they did to me?
और इसीलिए वो सोचा कि हाँ हो सकता है वो लोग मेरे साथ जो कि बेंजामिन के साथ वो कर सकते हैं.
And so he asks them lots of questions.
इसीलिए कुछ ज्यादा सवाल को वो लोग यीशु ने पूछा उनको.
And they tell him basically the truth.
और ये सच्चाई वो लोग बोल दिए.
And he tell him, well, we've got our dad back in the land of Canaan.
वो बोल दिए कि कनान में हमारे पिताजी हैं.
And we left one of our brothers back there.
और हमारे भाई को बेंजामिन को वहाँ पे हम लोग छोड़ के आए हैं.
Because our dad said we don't want to let him go.
और हमें पता नहीं कि हम एक मर गया और कहाँ चला गया हम पता नहीं.
And Joseph says I don't believe you.
और यूसुफ कह रहा है कि मैं तुम्हें विश्वास नहीं करता हूँ.
You better not come in front of me again unless you bring him with you.
वो कहता है कि तुम जब तक उसको सामने नहीं लाओगे मेरे पास तुम मेरे सामने नहीं आओगे.
So they go back to the land.
इसीलिए वो लोग फिर चले गए.
And they rejoice because they have food.
और वो लोग आनंद मना लगे क्योंकि उनके पास खाना था.
And they eat.
और वो खाना खाए.
In the hopes that the famine will end.
और वो सोचने लगे कि हो सकता है भुखमरी चला जाएगा.
But the famine doesn't end.
परंतु भुखमरी नहीं गया.
So they need to go back to Egypt for food.
इसलिए उनको फिर एक बार जाना पड़ा मिस्र को खाना लाने.
And Jacob says, boys, go back, go buy some more.
और याकूब ने कहा कि बेटे लोग जाओ और ज्यादा कुछ खाना लेके आओ.
And they say, dad, we can't go back unless we take Benjamin with us.
और ये लोग कहे पिताजी हम नहीं जा सकते जब तक हम बेंजामिन को साथ नहीं ले.
The master of the land, he asked us all sorts of questions and accused us of being spies.
और देश का मालिक जो हमें बताया कि हमको दोष दिया और कहा कि हम लोग भेद आने वाले लोग हैं.
And if we go back without Benjamin, he'll throw us in prison.
अगर हम बेंजामिन के बिना जाते हैं तो हमें मारेगा.
Look and read verses 8 and 9.
8 और 9 आयत को हम लोग देख सकते हैं 43 का.
Yes.
फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने ना पाएंगे वरन जीवित रहेंगे. मैं उसका जामिन होता हूँ मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचा कर सामने ना खड़ा कर दूं तब तो मैं सदा के लिए तेरी अपराधी ठहरूंगा.
So Judah,
यहूदा,
he speaks up and he says, "Dad, listen."
और वो कह रहा है कि पिताजी सुनिए.
I know you don't want to send Benjamin.
और मैं जानता हूँ कि आप बेंजामिन को भेजना नहीं चाहते हैं.
But we have no choice.
लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है.
So I will be surety for Benjamin.
और इसीलिए मैं बेंजामिन के लिए जामिन ठहराता हूँ.
If anything happens to him,
अगर कुछ उसको होता है,
you take it out of me.
आप मुझसे बदला ले पाएंगे.
I am his guarantee.
इसीलिए मैं उसके लिए जामीन ठहराया हूँ.
If he loses an arm,
अगर वो वहाँ पे कुछ खोता है,
take my arm.
और मेरा आप ले लीजिए.
If he loses his life,
और वो अपना जीवन का अगर खो देता है,
take my life.
मेरा जीवन को आप ले लेना.
I am making sure Benjamin returns to you.
वो कहा कि मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि बेंजामिन मेरे साथ आएगा.
I am surety for him.
और मैं जामीन लेता हूँ उसका.
Turn over to chapter 44.
और 44 को हम निकाले.
And read verse 32 to 33.
और 32 और 33 को हम लोग पढ़ेंगे.
फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ यह कह के इस लड़के का जामीन हुआ है यदि मैं इसको तेरे पास ना पहुंचा दूं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा. इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जा।
What happened in between?
और यहाँ पे बीच में क्या हुआ?
Well, they all go down to Egypt.
और जब ये लोग सब इजिप्ट मिस्र चले गए।
All 11 of the sons.
और 11 या बेटा।
And they show up before Joseph.
और यूसुफ के सामने ये लोग खड़े हो गए।
And they say, "This is the boy we were talking about."
और वो लोग कहने लगे कि ये लड़के के बारे में हम कहना चाहते थे जो बेंजामिन है।
And he says, "All right, I'll give you the food."
और तभी यूसुफ ने कहा, ठीक है, सभी ठीक ठाक है, मैं आपको खाना दूंगा।
So they go and fill all their sacks with the food.
और वो गए और दूसरा जो बोरियां लाए थे वहाँ पे वो खाना भरने लगे।
And Joseph says to his servants on a side.
और लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ अपने दासों को कहा,
I'm going to put them to the test.
मैं और उनको एक परीक्षा लेना चाहूंगा।
Put their money back in their sacks.
उनका पैसा उनके वो बोरी में डाल दो।
And take my cup.
और मेरा जो प्याला है,
the one I drink out of,
और जहाँ पे मैं पीता हूँ,
and put it in the youngest boy's sack,
और जो सबसे छोटा है उसके बोरी में डाल दो,
and then let them go,
और उनको जाने के लिए दीजिए,
and after they go,
और जब वो जाएंगे,
go after them,
उनके पीछे आप भी जाओ,
and accuse them of stealing my cup,
और उनको दोषी ठहराओ कि ये लोग मेरे प्याला को चोरी किए,
so that's exactly what happens,
और उसी तरह हुआ,
and the brothers are shocked, they're like, we didn't steal anything,
और भाई लोग वो shocked हो गए, कहे कि हम लोग कुछ चोरी नहीं किए।
Don't accuse us of this.
हमको दोषी मत ठहराइए।
And so they open up each sack.
और इसीलिए सब अपने-अपने बोरियों को खोलने लगे।
And like all our money's here.
और देखे कि सबका पैसा अपने-अपने बोरियों में है।
And there's a sinking feeling that starts.
और एक अजीब उनके जीवन में आ गया।
And finally they get to Benjamin's sack.
और जब बेंजामिन के पास पहुंचे बोरियों में।
And they open his sack and not only is the money there, so is the cup.
जब खोला गया तब खाली पैसा नहीं थे लेकिन पैसा के साथ यूसुफ का प्याला भी था।
So they said, you're coming back with us.
इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि हम आपको हमारे साथ चलना लग पड़ेगा फिर।
And they're all brought before Joseph.
और यूसुफ के सामने उनको फिर लाया गया।
And they say, this boy, he's going in prison.
और कहने लगे ये जो लड़का जो लिया है उसको आप वहाँ पे प्रिजन में डाल दो।
We'll let the rest of you go, but this one's staying here.
बाकी सबको छोड़ दीजिए परंतु इसको डाल दीजिए जेल में।
That's verse 32 and verse 33. That's Judah speaking.
और यहाँ पे वही यहूदा कहता है 32 और 33 में।
And he's saying, I was surety for the lad.
वो कह रहा है कि मैं जामीन लेता हूँ उसका।
I told my father I would take his place.
और मैं अपने पिता को कहा हूँ कि मैं उसके जामीन लूंगा बोल के।
So let me take his place.
इसीलिए मैं उसके उसको लेके जाऊंगा।
Let the boy go.
Oh, आप लड़के को छोड़ दीजिए।
Cast me into your prison.
आप मुझे जेल में डाल दीजिए।
Kill me if that's the law.
अगर व्यवस्था आपका है तो मुझे मार दीजिए।
But let him go.
लेकिन उसको छोड़ दीजिए।
Because I was his guarantee.
क्योंकि मैं उसका जामिन लिया हूँ।
That's the surety of Jesus Christ in Hebrews chapter 7.
ऐसा ही यीशु मसीह हमारे लिए जामिन लिया जो इब्रानियों का लेखक लिखते हैं।
It was a wonderful thing that Judah did.
और यहूदा एक अच्छा काम किया यहाँ पे।
And that's the reason that the line of the king comes through Judah.
यही कारण है जो यहूदा का सिंह जो है वो यहूदा के गोत्र से आए।
That's why he received that blessing.
इसीलिए वो आशीष का कारण ठहरे।
That's why David is of the tribe of Judah.
इसीलिए दाऊद जो है जो यहूदा के गोत्र से आया।
That's why the Messiah is of the tribe of Judah.
इसीलिए मसीहा जो यहूदा के गोत्र से आया।
Judah was being one of those little pieces of the mosaic.
और यहूदा जो है हम लोग पिछले जो समय जो बात की थी एक बड़ा सा पोर्ट्रेट के बारे में उसका एक छोटा सा टुकड़ा है वो।
So Jesus says to the father,
और इसीलिए यीशु मसीह पिता को कहे,
they can't pay.
और ये वो दे नहीं सकते।
They don't have the ability.
और उनके पास वो योग्यता नहीं है।
So I'll be their guarantee.
इसलिए मैं उनका जामिन लूंगा।
I'll step in their place.
और उनके जगह मैं रहूंगा।
I'll take their punishment.
और मैं उनका दंड सह लूंगा।
You give to them what you were going to give to me.
आप मुझे जो देने वाले हैं उनको दे दीजिए।
Because they're my people.
क्योंकि वो मेरे लोग हैं।
I'll take their punishment.
और मैं उनका दंड ले लूंगा।
That's what verse 22 means.
और ये जो इब्रानी 7 का 22 में लिखा जाता है ये इसका मतलब
By so much was Jesus made a surety of a better testament.
और हमारे लिए एक अच्छी वाचा के उत्तम वाचा के लिए हमारे लिए एक जामिन ठहरे वो।
He stood in the gap for me.
वो गैप में ठहरे आपके लिए और मेरे लिए।
He stood in the gap for you.
वो आपके लिए वो गैप में ठहरे।
That's why in verses 23 and 24.
और इसीलिए जो 23 और 24 पर
the writer says it's impossible to go back again.
इसलिए इब्रानियों के लेखक कहते हैं कि फिर पीछे जाना यह असंभव है।
And they truly were many priests.
और वो कहता है कि बहुत से याजक तो बनते हैं.
Because they were not suffered to continue by reason of death.
क्योंकि ये कारण यही था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी.
But this man.
परंतु ये इंसान.
Because he continueth ever.
क्योंकि वो युगानुयुग रहता है.
Has an unchangeable priesthood.
इस कारण उसका याजक पद अटल है.
Remember, he's been talking about the priesthood of Levi, the priesthood of Aaron.
अब वो कहता है यहाँ पे देखिए हारून के याजक पद के बारे में, लेवी के याजक पद बारे में.
And he says they died one after another.
और वो कह रहा है कि बाद वो सात के बाद एक के बाद एक सब मर गए.
Every generation there's a new one that comes along.
और हर वंश में एक नया आया, फिर मर गया, फिर आया.
And he's going to die too.
और वो भी मर जाएगा.
And the one after him.
और उसके बाद जो आएगा वो भी मरेगा.
The one after that.
वो भी मरेगा.
But our high priest is different.
लेकिन हमारा जो महायाजक है वो अलग है.
He has an unchangeable priesthood.
वो उसका जो याजक पद है वो अटल है.
Because he lives forever.
क्योंकि वो हमेशा वो जीवित है, अनंत कालीन जीवित है.
For eternity.
वो अनंत कालीन तक जीवित है.
No looking back.
और पीछे नहीं मुड़ के नहीं देखते.
No looking for another priest.
और दूसरा कोई याजक को नहीं देखते.
When we look ahead, we don't look for someone else to come.
हम जब आगे देखते हैं कोई और हमारे लिए आएगा ये नहीं देखते हैं.
We look for our high priest to come back.
और हमारे याजक को हम देखते हैं जो हमारे लिए फिर से आएगा.
And we believe he will because he said he will.
और क्योंकि वो आएगा क्योंकि वो ऐसा कहा है.
Because everything he said has been true.
और क्योंकि वो यहाँ पे जो भी कहा सब सच हुआ.
And so we have confidence in him.
इसीलिए उस पर हमारे उसी के ऊपर हमारा दृढ़ विश्वास है.
That's why he says verse 25.
और 25 में वही चीज वो कहा.
Wherefore?
इसलिए.
Well, there's that word.
या अब ध्यान दीजिए यहाँ पे.
With all the things we've been saying, this is the consequence. This is the result.
और जो भी हम कहा जाता है उसका परिणाम स्वरूप लिखा जाता है इसलिए.
Because he's been made a high priest after the order of Melchizedek.
और मलकीसदक की रीति में ये जैसे अनंत कालन याजक जैसे ठहरा.
Because his priesthood is greater than the Levitical priesthood.
और उसका जो याजक पद वो लेवी के याजक पद से जो ठहरा उत्तम ठहरा.
Because he's surety for a better testament.
क्योंकि वो एक उत्तम वाचा के लिए जामिन ठहरा.
He is able to save them to the uttermost that come unto God by him.
और जैसे ये परमेश्वर के जरिए उसी के पास जो आते हैं उसको उद्धार देने के लिए वो सक्षम है.
Let that sink in for a moment.
ओ इसी को हम थोड़ा चिंता करेंगे.
It's an amazing statement that is made.
और ये अद्भुत जो उक्ति है जो दिया गया है.
Is Christ able to save you?
क्या मसीह सक्षम है आपको उद्धार देने के लिए?
You know, there are Christians around, people who call themselves Christians, I should correct myself.
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने को मसीह तो कहलाते हैं.
Who believe that Jesus saved them a little bit.
और वो सोचते हैं कि यीशु मसीह उनको थोड़ा थोड़ा उद्धार दे सकता है.
He got me this far to God and I've got to do the rest.
और मैं परमेश्वर मेरे लिए इतना करेगा और मैं उतना करूंगा उसके लिए.
I've got to go through purgatory.
और मैं pardon?
I've got to go through purgatory.
और मैं मुझे बहुत सारे चीजों के देव के जाना पड़ेगा.
I have to be sanctified in a special way.
और मैं अच्छी विशेष रूप में मुझे धोना पड़ेगा खुद को.
My Bible tells me that my high priest.
मेरा बाइबल मुझे ये सिखाता है कि मेरा महायाजक.
Is able to save me to the uttermost.
मुझे पूरा पूरी उद्धार देने के लिए वो सक्षम है.
That means in every way.
उसका मतलब सारे क्षेत्रों में.
How much is the blood of Christ worth?
और यीशु मसीह का लहू कितना वो बहुमूल्य है, कितना काम कर सकता है?
Is it only worth a few small sins?
और ये क्या छोटा-छोटा खाली पाप को धो सकता है?
No, he pays for all my sins.
No, ना मेरे सारे पापों के लिए वो धो डाला गया.
Remember what he says in Philippians 1.
और फिलिपी 1 में क्या कहा वो याद कीजिए.
He who began a good work in you will complete it until the day of Christ Jesus.
जो आपके अंदर में एक अच्छा काम को शुरुआत किया है वो मसीह के आने तक वही पूरा करेगा.
It's to the uttermost.
ये पूरा पूरी.
It's the same word that he says when he talks about the apostles and he says you're going to be witnesses to me.
जैसे वो ये कहा कि अपने परिंदों की आप तुम लोग मेरे लिए ये गवाह ठहरोगे.
You remember that in Acts chapter 1.
और प्रेरित एक को आप याद कीजिए.
You're going to be witnesses to me in Jerusalem.
आप लोग मेरे लिए यरूशलेम में गवाह ठहरोगे.
And after Jerusalem, Judea.
उसके बाद यहूदा.
And after Judea, Samaria.
उसके बाद सामरी.
And after Samaria to the uttermost parts of the earth. और
सामरी के बाद पूरे पूरा पृथ्वी के चारों ओर
the gospel has gone around the world
और ये सुसमाचार ये पृथ्वी के चारों ओर फैल गया
to the uttermost
पूरा पूरी चारों ओर
there is no place where the gospel will not reach
ऐसा कोई जगह नहीं जहां पे परमेश्वर की सुसमाचार नहीं पहुंचा
that's what that word means
और इसका मतलब यही है
it's the same word
ये सही है वही शब्द है
he is able to save you to the uttermost
ये पूरा पूरी आपको उद्धार देने के लिए वो सक्षम है
complete in all aspects
और हर एक क्षेत्र में पूरी तरह
that's why we're able to say that we're able to be in the presence of God when we pray
इसीलिए हम कहते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं हम कह पाते हैं कि हम उसके सामने खड़े हो सकते हैं
it's because he's already saved you to the uttermost
क्योंकि वो पूरी तरह आपको उद्धार दे चुका है
your glorification is just a waiting game
और आपको महिमा देने वाला चीज वो कोई अपेक्षा करने वाला चीज नहीं है
it is as sure as your justification
ये आपको जब से जैसे धर्मी ठहराया गया उसी तरह श्योर है
it's as sure as your sanctification
आपको पवित्र बनाया गया उसी तरह श्योर है
so our high priest
और हमारा जो महायाजक
he has died for us in the atonement
हमारे लिए मरा वो
he's able to sympathize with us because of his infirmities
वो हमारे दुर्बलताओं में वो हमें आशा देने वाला व्यक्ति
and because he saves us to the uttermost
और हमें वो पूरी तरह वो उद्धार देता है
he ever liveth to make intercession for us
और वो हमेशा हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना भी करता है
he is not dead
और वो मरा नहीं है
he is ever living in heaven right now
वो हमेशा जीवित है वो अभी स्वर्ग में है
He is seated upon the throne
और वो अपने सिंहासन में बैठा है
Don't confuse yourself
और अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए
There are people that think that Jesus is standing there wringing his hands and saying please father give them this
और कोई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ऐसे खड़ा है और कहता है पिताजी प्लीज दे दीजिए उनको
That is not the picture the Bible gives
और बाइबल ऐसा नहीं बताता
The Bible says he saved me to the uttermost
और ये बाइबल बताती कि वो पूरी तरह मुझे उद्धार दे चुका है
Not only is he my great high priest
वो खाली मेरा महायाजक नहीं है
He is the great king
और वो एक महान राजा भी है
He is the great prophet
और एक बड़ा नबी भी है
All things are under him
और हर एक वस्तु उसके नीचे है
He's the one with dominion
और वो उसका सारे चीजों का अधिकारी है
He's the one that has the power to direct the angels where to go
और स्वर्ग दूतों को कहां जाना आना करना यही वो नियंत्रण करेगा करता है
Because the chapter 1 told us they're worshiping him.
और हम जानते हैं क्योंकि अध्याय 1 यही बताता है कि स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं.
So that when he intercedes for us.
और इसलिए वो जब हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना कर रहा है.
He is directing all things for our good.
और हमारे सारे उत्तमता के लिए वो सब दिखा रहा है.
Our spiritual good.
हमारे आत्मिक उत्तमता.
So that we look like Christ.
जैसे कि हम यीशु की तरह दिखाई पड़े
so that we're conformed to his image.
और जैसे हम उसकी प्रतिमूर्ति में दिन ब दिन आगे बढ़े
He's done it because he is our great high priest.
और ये कर चुका है क्योंकि वो हमारा महायाजक है
It's what we've been told throughout this book.
और ये पुस्तक के जरिए हमको कहा गया है
Our great high priest is the captain of our salvation.
हमारा जो महायाजक प्रधान महायाजक वो हमारे उद्धार का कप्तान है
He is holy, blameless.
और वो है पवित्र है वो निष्कलंक है
For look in verse 26
और 26 आयत को जब हम देखते हैं
For such a high priest became us
और ऐसा एक महायाजक जो हमारे लिए
Who is holy, harmless, undefiled
जो योग्य था पवित्र था निष्कपट था निर्मल था
Separate from sinners and made higher than the heavens
पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया
Do you remember that word became
और ये आप याद कर सकते हैं जो हमारे लिए किया गया
It's the same word that was used in chapter 2 verse 10
और अध्याय 2 उसका 10 में यही वो शब्द को इस्तेमाल किया गया है
Where the author says it became him to be made perfect through suffering For us.
और जैसे भी लेखक यहाँ पे वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारे लिए जैसे दुख और ताड़ना को सहे
That he's the captain of our salvation and because he suffered he's more beautiful.
जैसे कि वो हमें उद्धार का कप्तान ठहरे और जो ये कर दिया वो और भी सुंदर हो गया
Now he turns that around.
अभी उसको वो बदल ऐसे बदल रहा है
And he says it becomes us.
और कि वो हम वो है
It makes us more beautiful.
वो हमको और सुंदर बनाया
Because of who our high priest is.
क्योंकि वो हमारा महायाजक जो है उसके लिए
We are more beautiful because of what it says here.
और यहाँ पे जो लिखा जाता है कि हम ज्यादा सुंदर हैं क्योंकि हमारे महायाजक हमारे लिए जो जो किया है
That our high priest is holy.
क्योंकि हमारा जो महायाजक है वो पवित्र है
He is holy before God.
वो परमेश्वर के सामने पवित्र है
There is purity there.
और उसके जीवन में वही शुद्धता है
He is undefiled.
और वो जो वो अशुद्ध नहीं है, निर्मल है.
He began as holy.
और
He began as holy.
और वो उसकी शुद्धता को, वो पवित्रता को रखा है, आरंभ है.
When he became flesh, he was tempted.
और जो उसको शरीर धारण किया, उसको परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा.
And still remained pure.
लेकिन फिर भी वो शुद्ध ठहरा.
He was holy and undefiled.
वो पवित्र है और निर्मल है.
He was harmless.
और वो निष्कलंक है, निष्कपट है.
We're told he won't break the bruised reed or quench the smoking flax.
और वो हम कहते हैं कि वो नल को नहीं भांगेगा, नहीं तोड़ेगा बोल के.
He builds us up. He has compassion on us.
और हमारे ऊपर वो compassion करता है, इसलिए हमें तोड़ता नहीं परंतु बनाता है.
We talked about Eli. We talked about Aaron.
हम हारून के बारे में बात की, हम एली के बारे में बात की.
How their compassion led to sin.
और उनका जो सहानुभूति है, कैसे वो पाप के और लेके गया.
But our high priest has perfect compassion.
लेकिन हमारे जो प्रधान महाजन, उनके पास अच्छा सहानुभूति है.
Because he's separate from sinners.
क्योंकि वो पापियों से अलग है, पाप से अलग है.
Because he is the perfect father, perfect God.
क्योंकि वो एक सिद्ध परमेश्वर है.
He's made higher than the heavens.
और स्वर्ग से भी वो ऊंचा है.
I don't know if you've seen the pictures from all these telescopes that they now have in space.
और मुझे पता नहीं परंतु आप जो देखेंगे टेलीस्कोप के जरिए जो स्काइज को.
I always think they're beautiful.
और वो सब बहुत सुंदर दिखता है ये.
Jesus Christ is more so.
लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उससे भी कहीं बढ़कर सुंदर है.
He is higher than the heavens.
और ये स्वर्ग से भी ऊंचे हैं ये.
He is beyond them because he created them.
वो सबसे ऊपर है पर क्योंकि उसको वो बनाया है.
That's who your high priest is.
और ये आपका वो महायाजक है.
It's a glorious thing to know the Savior.
और आपके उद्धारकर्ता को जानना सबसे एक महिमा का कारण है.
Because he's higher than the heavens, but he humbled himself for you.
और क्योंकि वो स्वर्ग से भी ऊपर है परंतु आपके लिए, मेरे लिए थोड़ा नीचे किया गया.
Lord willing, we'll get there in chapter 12.
और अगर परमेश्वर की इच्छा होगा हम 12 अध्याय में उसे देखेंगे.
In verse 2 it says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.
और लिखा जाता है 12 के 2 में, कोई पढ़ दे.
Verse
2. 12:2. 12:2, no?
Yeah.
Please. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले.
Who for the joy that was set before him endured the cross.
जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था.
That statement, who for the joy that was set before him.
यहाँ पे लिखा जाता है जो जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था.
What joy was set before Christ.
कौन सा आनंद यीशु के सामने धरा था.
It was the redemption of his people.
ये उसके लोगों का मुक्ति, ये मुक्ति का आनंद यीशु के लिए आनंद का कारण था.
So that he could call us brethren.
क्योंकि तब वो हमें भाई बोल के बुला सकता है.
Brothers,
भाई.
He's redeemed me.
वो हमें मुक्ति दिया है.
We were that joy.
हम वो आनंद हैं.
If you are a believer in the Son of God, we were that joy.
अगर यीशु पुत्र परमेश्वर के जरिए आप एक विश्वासी हैं, तो आप उसका आनंद का कारण हैं.
That's what gave him the strength to go through the cross.
और यही सब उसे सक्षम बनाया क्रूस की ओर जाने के लिए.
Because he thought 2,000 years from now, I've got a people.
और क्योंकि वो 2,000 साल पहले ही वो सोचा था कि मेरा कुछ लोग हैं.
I've got some from England.
और कुछ लोग इंग्लैंड से हैं.
And I've got some from Odisha.
कुछ लोग ओडिशा से हैं.
And I've got some from, I've forgotten your state.
और कुछ मध्य प्रदेश से हैं.
Madhya Pradesh.
Yes.
We're all over.
और ये हम हैं सब.
Because he had a people.
क्योंकि उसका कुछ लोग थे.
And we were his joy.
और हम उसके आनंद हैं.
That's our great high priest.
और ये हमारा महान प्रधान महायाजक है.
And the writer of Hebrews tells us.
और इब्रानी का लेखक हमें कहते हैं.
He doesn't need to offer up sacrifices like those other ones.
और जो दूसरे लोग बलिदान करते हैं वैसा बलिदान हमें नहीं चाहिए.
He doesn't need to have a sacrifice for sin.
और जैसे हारून जैसे सैक्रिफाइस करता था, बलिदान करता था, यीशु मसीह को ऐसे बलिदान जरूरी नहीं पड़ा.
Remember what Aaron did.
और हारून क्या कर रहा था आप सोचिए.
On the day of atonement.
और प्रायश्चित के दिन में.
Before he could offer a sacrifice for the nation.
और जब देश के लिए, सारे देश के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था.
He had to first offer a sacrifice for himself.
उससे पहले उसके लिए बलिदान देता था.
He had to have his sins taken care of.
क्योंकि उसके जो उसके जीवन में जो पाप थे उसके लिए पहले बलिदान करना था.
Before he could ever deal with the nation's sin.
और उससे पहले कि वो देश के लिए बलिदान करे.
That's what he says in verse 27.
और यहाँ पे वही 27 में वो कहता है.
Jesus had no need for that.
और कहता कि यीशु मसीह का इसका जरूरत नहीं पड़ा.
So he has only one sacrifice.
इसलिए एक ही बलिदान वो किया.
He offered up himself.
और अपने आप को दे दिया.
He offered him up for us. He offered himself for us.
और हमारे लिए अपने आप को दे दिया.
Because the law is insufficient.
क्योंकि व्यवस्था वो काफी नहीं था.
The law cannot do what Christ did.
जो मसीह जो कर सकता था व्यवस्था कर नहीं पाया.
And pay attention to it.
और इसलिए इसको ध्यान दे.
Remember the promise to Abraham was made 400 years before the law.
और व्यवस्था के 400 साल पहले इब्राहिम को जो प्रतिज्ञा मिला था उसके बारे में सोचिए.
God spoke the oath through David.
और दाऊद के जरिए प्रभु शपथ से बात किया.
500 years after the law.
और व्यवस्था के 500 साल के बाद.
The promise supersedes the law.
और प्रतिज्ञा जो है वो व्यवस्था के ऊपर आता है.
The oath of his priesthood supersedes the law.
और उसका जो याजक पद का शपथ वो व्यवस्था के ऊपर आता है.
So that he is able to save to the uttermost them that come to God by him.
ताकि जो उसके पास परमेश्वर के पास है उनको पूरी तरह उद्धार दे सके.
When I was studying for these lessons.
और जब ये अध्यायों को मैं जो मनन कर रहा था.
There's a gentleman by the name of Arthur Pink who I thought said it beautifully.
और एक यानी व्यक्ति है जिसका नाम आर्थर है.
He said it was no easy matter to subdue Satan.
और ये ऐसा इतना it is not easy.
No easy matter to subdue Satan.
शैतान को प्रलोभित करना और एक यानी it's not easy इतना आसान नहीं है. थैंक यू.
I'm going to say it quite a few times.
Please.
It was no easy matter to fulfill the law.
और ये व्यवस्था को पालन करना उतना आसान नहीं है.
It was no easy matter to take away sin.
और पाप को ले लेना पाप का क्षमा देना उतना इजी नहीं है.
It was no easy matter to satisfy the wrath of God.
और परमेश्वर के क्रोध को शांत करना उतना आसान नहीं है.
It was no easy matter to procure pardon for us. Procure to give us a pardon.
और ये इतना इजी नहीं है कि परमेश्वर साथ हम जाए.
It was no easy matter to purchase grace and glory for us.
ये उतना आसान नहीं है कि परमेश्वर से अनुग्रह को हम प्राप्त करें.
It was no easy matter to give a sinner righteousness.
और एक पापी को धर्मी ठहराया जाए उतना आसान नहीं है.
But all of that belongs to the salvation of our God through Jesus Christ.
परंतु ये सब चीज इजी हो गया कि परमेश्वर अपने बेटे के जरिए जो हमें उद्धार दिया.
He has done all that is necessary.
और जो हमें आवश्यकता था सारा चीज को वही पूरा किया.
There is nothing else that needs to be done.
और कुछ बाकी नहीं है जो करने का योग्य. सब कुछ हो गया है.
There is no other sacrifice.
और कुछ दूसरा बलिदान नहीं.
There is no other person we need to stand between God and us.
ऐसा कोई व्यक्ति भी हमें नहीं चाहिए जो परमेश्वर हमारे बीच में मध्यस्थी ठहरे.
It's a wonderful thing to have our brothers and sisters pray for us, isn't it?
और ये अच्छा विषय है जो हमारा भाई बहन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं.
To have someone else care for us enough to go to our Savior to help.
और वो पढ़न.
To have someone care for us enough to go to our Savior for help.
और ऐसा अच्छा है कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करे प्रभु के सामने.
But that doesn't mean that we each can't go to our Savior for help.
और इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने अपने खुद में हम परमेश्वर के सामने आ पाएं.
How could you ever hope? To draw near to God through some dead priest.
और आप कैसे सोच सकते हैं कोई मृतक याजक के जरिए आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं.
Through some dead idol.
कुछ मृतक वो मूर्तियों के द्वारा.
It's impossible.
ये असंभव है.
Our high priest ever lives to make intercession for us.
और हमारा जो याजक है हमेशा जिंदा है जीवित है हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना करने के लिए.
He is able to save us to the uttermost.
और वो हमें पूरी तरह उद्धार देने के लिए सक्षम है.
Because he didn't need to offer a sacrifice for himself.
क्योंकि वो अपने लिए उसको बलिदान नहीं करना पड़ा.
Therefore he is our great sacrifice.
इसीलिए हमारे लिए एक बड़ा बलिदान वो ठहरे.
Turn to Isaiah 53.
आइजाया उसका 53 को निकालें हम लोग.
Someone read the chapter, please.
आओ कोई उस अध्याय को पढ़े. ना ना तेपन पूरा.
जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले. उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप कि ऐसा हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते. वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सत्रह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और गाड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा दिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग फहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी के प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी झक की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुछ ले उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत देरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग लूंगा और वहाँ सामर्थियों के संग रूप बांट देगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तब भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है।
Amen. That is our high priest.
और ये हमारा महायाजक है।
That is our sacrifice.
ये हमारा बलिदान है।
Study it.
और इसको पढ़िए।
Understand it because of the things we've talked about.
और जो जो बात हम बात किए उसको समझिए।
He was wounded for our transgressions.
और हमारे लिए उसको घायल किया गया।
He is the man of sorrows.
और वो दुख लिए न लेने वाला व्यक्ति है।
We're told at the end of the chapter that the Father will see of the travail of his soul and be satisfied.
और हम निचले हिस्सों में देखते हैं कि परमेश्वर ने खुश उनको देखा और अच्छा लगा उसको कि उसको कुचला जाए।
That's another way of saying he will save to the uttermost.
और इसका मतलब यही है एक दूसरी भाषा में कि हमें वो पूरी तरह उद्धार देने के लिए।
To think about what we've been talking about thus far in Hebrews.
और इब्रानियों में जो बात अभी तक हम लोग किए हैं।
I tried to come up with something that will sort of give us the understanding.
और कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा जो हमें समझने के लिए आसान होगा।
We built the beds for people to sleep in.
और पिछले दिनों में यहाँ पे लोगों के यहाँ के बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पे बेड बनाए सोने के लिए।
And we put ladders on the beds.
और वहाँ पे एक सीढ़ी डाल दिए उठने के लिए ऊपर।
The reason is we wanted someone that was on the ground.
और इसका कारण यह है कि जो नीचे है।
To be able to climb up to get to the top bed.
और जैसे कि वो ऊपरी हिस्सा का जो बेड है उसके ऊपर वो चढ़ के जा सके।
Simple thing, isn't it? Makes sense.
ये एक सादा चीज है, हाँ कि नहीं?
But you have to make sure that the ladder is low enough.
लेकिन आपको जानना है जब ये सीढ़ी नीचे है जैसे वो चढ़ पाएगा अगर वो सीढ़ी अगर और ऊंचा किया जाएगा जैसे कि वो अपने बेड में जा सकते हैं।
मैं
किसी को नई दोष भी नहीं दे रहा हूँ, नहीं चाह रहा हूँ कि सब लोग ऊपरी बेड में रहे, ठीक है सब।
But I want you to think of a ladder.
लेकिन एक सीढ़ी के बारे में आपको मैं बोलना चाहता
हूँ
और एक सीढ़ी यहाँ से जो जमीन से
up to God's heaven.
और परमेश्वर तक स्वर्ग तक
there's a problem.
और एक यहाँ पे समस्या
the ladder has to be low enough that we can climb.
और वो सीढ़ी को निचला होना होगा ताकि हमको हम चढ़ने पाए
that we can take that first step up the ladder and go.
जैसे कि हम अपना पहला वो स्टेप को हम लोग वहाँ पे रख के जा पाए।
God couldn't be that first step.
अब ये परमेश्वर खुद वो पहला स्टेप नहीं होंगे.
Because he's not low enough.
क्योंकि वो अभी तक वो इतना निचला नहीं आए हैं.
So he had to become flesh.
इसीलिए उनको शरीर धारण करना पड़ा.
He had to become lower than the angels.
इसलिए स्वर्गदूत से नीचे होना पड़ा.
The ladder exists because of his sacrifice.
और ये सीढ़ी इसीलिए है ताकि उसके बलिदान के द्वारा.
But that ladder has to reach high enough.
और लेकिन वो सीढ़ी को उठना है.
It has to take us to God.
और ये परमेश्वर के पास पहुंचना है.
It couldn't go there if he was just a man.
और अगर ये वो खुद को एक इंसान खाली होता तो परमेश्वर के पास पहुंच नहीं पाता.
He had to be the God man.
इसीलिए उसको परमेश्वर और इंसान दोनों होना पड़ा.
That's the only way it works.
और ऐसा ही वो काम कर सकता है.
It doesn't work any other way.
और दूसरी वो किसी रास्ते से वो काम नहीं कर सकता.
And so we trust Jesus Christ.
इसीलिए हम यीशु पर भरोसा करते हैं.
He is our way.
वो हमारा मार्ग है.
He is our only hope.
वो हमारा ही भरोसा है.
He is the object of our faith.
वो हमारे विश्वास के तत्व है.
Because he is our great high priest.
क्योंकि वो हमारा प्रधान महायाजक है.
He came to this earth for our sake.
और हमारे लिए वो पृथ्वी में आया.
And all of these pictures.
और ये जितने हम पढ़ रहे हैं सब छवि.
All of those little tiles of the Old Testament.
और जैसे कि हम पढ़ रहे थे पुराने नियम में जितने जितने छोटे छोटे किरदार हैं सब.
Are there to help us to understand that.
ये समझने के लिए हमें मदद करते हैं.
To give us the proper picture.
और एक अच्छा छवि देने के लिए सही छवि देने के लिए.
So that we understand that God has done everything necessary for our salvation.
और हम समझ पाए कि हमारे उद्धार के लिए जो जो आवश्यकता था उसके लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया.
That's who he is.
अब वो वही है.
Because he loves us.
क्योंकि हमें प्रेम हमसे प्रेम रखता है.
Because he cares for us.
और हमारा वो ख्याल रखता है.
It's not my work.
ये मेरा काम नहीं.
It's not your work.
ये आपका काम नहीं.
It's not your work for justification.
धार्मिकता धर्मी ठहरने के लिए आपका काम नहीं.
It's not your work for sanctification.
और पवित्र ठहरने के लिए आपका ये काम नहीं.
Just like it's not your work for glorification.
जो आपको महिमा आपको जिससे महिमा मिले इसी के लिए आपका काम नहीं.
It is the work of our prophet, priest, and king.
और ये वही उसका काम है जो हमारा नबी है राजा है और याजक है.
And the writer of Hebrews just keeps reminding us and reminding us and reminding us.
और इब्रानियों का लेखक हमें याद दिला रहे हैं.
They say that to remember something it has to be repeated at least 10 times.
और कोई ऐसे कहते हैं कि याद रखने के लिए एक चीज को कम से कम 10 बार दोहराना पड़ता है.
And the writer of Hebrews is building upon each section over and over and over again.
इसी तरह इब्रानियों के लेखक भी एक बार दो बार करके वो दोहरा रहा है.
So that when you read the next section you have to remind yourself of the previous section.
और जैसे कि आप नेक्स्ट सेशन को जाओगे उसके बाद पहले दिया हुआ चीजों को जान सके आप.
And when you read this section he's already talking about the next section.
और जब आप ये पढ़ रहे हैं आप उसके बारे में जान सके.
So he's building us up in our knowledge of who Jesus is.
और हमको हमारे ज्ञान को बना रहा है ताकि हम जान सके यीशु मसीह कौन है.
That he is the one who leads us.
वो वही व्यक्ति है जो हमें अगुवाई करते हैं.
He is a sufficient and a glorious savior.
आ वो काफी है हमारा महिमा का उद्धार वो है.
All that we need is found in him.
और जो जो हमें चाहिए उसमें सब कुछ है.
Don't look anywhere else.
और किसी को किसी जगह आप नहीं देखिए.
We point you to Jesus Christ today.
हम यीशु की तरफ बढ़ने जाएंगे.
Amen.
Amen.